جزاكم الله خير.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں معرفہ قرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور ابھی آیات نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں پچھلے بدھ کے دن پڑھ لیا تھا. آج جو ہے ان کے معارف و مسا بلکہ نہیں خلاصہ تفسیر پڑھنا ہم شروع کریں گے. تو خلاصہ تفسیر از بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، جو ان کے شیخ طریقت بھی تھے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور وہ ان کے شیخ تھے. اچھا، تو یہ ہم نے خلاصہ تفسیر پچھلی کلاس میں پڑھنا شروع کر دیا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ نشان بھی نہیں لگایا تھا. بہرحال ہم شروع سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 81 کے اوپر، جو آپ کے سامنے دوسری شکل میں ڈسپلیڈ بھی ہے. کہ فرمایا کہ لیکن بنی اسرائیل نے عہد مذکور کو توڑ ڈالا. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے سے بات چل رہی تھی نا بنی اسرائیل کی ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ٹھیک ہے، تو وہی بات آگے چل رہی ہے، تو اس وجہ سے پہلے بریکٹس میں تفسیری نقطہ لکھا کہ بنی اسرائیل نے عہد مذکور کو، جس کا پہلے ذکر آیا تھا پچھلی آیت میں، اس کو توڑ ڈالا. ٹھیک ہے، اور توڑنے کے بعد طرح طرح کے عقوبات میں جیسے مسخ اور ذلت وغیرہ میں گرفتار ہوئے. یعنی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا، ذلیل و رسوا ہوئے، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، پورے پورے نہ بھی بنا دیے گئے ہوں لیکن کم از کم چہرے جو ہیں وہ مسخ ہو گئے، یا حرکتیں جو ہیں وہ ان کی طرح سے شروع کر دیں. تو یہ بہت ہی ظاہر اشرف المخلوقات سے گرے ہوئے درجے کے کام تھے، جو کہ بندر کرتا ہے، جو کہ خنزیر کرتا ہے، تو یہ ان کی ذلت کا سبب بنے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، کسی چھوٹے بچے کے ساتھ تو وعدہ نہیں کیا تھا توڑ دیا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوتا. تو ان کو عقوبات ملے، سزائیں ملی. بس یہ جو ان کو عنایت و الطاف الہیہ سے بعد ہوا، لطف الہیہ، اللہ تعالیٰ کی جو لطف و کرم تھے ان کے اوپر ایک سے ایک، سب سے پہلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عطا ہو جانا، ان کے اوپر کتنا بڑا لطف و کرم تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا جانا، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا، کتنی بڑی عنایت تھی. ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی من و سلوہ کا ملنا، اور جو ہے وہ چشموں کا جاری ہو جانا، ایک سے ایک ان کے اوپر جو ہے وہ نعمتیں تھیں. تو ان سے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کو دوری ہو گئی، بعد ہو گیا. تو یہ جو لطف، ان کو لطف و عنایت سے بعد ہوا، تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی، عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت یعنی اس کے آثار سے دور کر دیا، رحمت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی رحمت کا ایک اثر ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تو اس اثر سے محروم کر دیا. और यही हकीकत है लानत की। यानी मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लानत के लफ्ज का मतलब क्या है, अल्लाह ताला की रहमत से महरूमी हो जाए। अल्लाह की रहमत तो हर जगह पर मौजूद है ना, वसीअत रहमती क्या है, अला कुल्ल शैइन, कुरान मजीद की जो आयत है इन्ना रहमती वसीअत कुल्ल शैइन, मुझे सही से याद नहीं आ रही है। तो अल्लाह की रहमत तो हर चीज पर मुहित है, लेकिन जो अल्लाह से वादा तोड़ता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो वो गोया के अपने गिर्द जो है ना, वो एक वैक्यूम बना लेता है जो कि उसको उस रहमत से महरूम कर देता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, लेकिन अब आप एक वर्चुअल स्पेस एनवायरनमेंट जो है वो दुनिया में रहते हुए बना लें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी वेसल के अंदर या किसी कमरे के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको पंप आउट कर देना होगा। ठीक है, अब उस छोटी सी जगह के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हालांकि दुनिया के अंदर हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन आपके उस छोटे से कमरे में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये शायद जो वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस तरह की एनवायरमेंट बनाई भी जाती है नासा वगैरह के लैब्स के अंदर। तो उसी तरीके से अल्लाह से अहद शिकनी करने वाले के भी यही मामला हो जाता है कि हर तरफ रहमत मौजूद है, लेकिन उसके गिर्द रहमत मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही अपने अमलों की वजह से वैक्यूम बना लिया है। वह रहमती वसियत कुल्ल शैइन जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, कि मेरी रहमत तो हर चीज के ऊपर वसी है, फैली हुई हर चीज के ऊपर। अच्छा, और इसी लानत के आसार से यह है, ठीक है, जब अल्लाह ताला की लानत होती है, रहमत से दूरी हो जाती है, तो उसका एक और असर क्या होता है कि हमने उनके कुलूब को सख्त कर दिया। कल्ब की जमीन, ये एक वर्चुअल चीज है, ये एक इंटेंजिबल चीज है, ये एक रूहानी चीज है। कल्ब, ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही, बल्कि ये रूहानी दिल की बात हो रही है, जिसके लिए कल्ब का लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी एक गोया के हमारे दुनिया से अगर इसकी मुशाबियत की जाए, तो गोया कि जिस तरह जमीन होती है खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, उस जमीन के अंदर नरमी होती है, पानी डालते हैं तो वो जमीन नरम होती है, उसके अंदर जो है वो खुरपी से उसको खोदते हैं तो वो जमीन नरम होती है। अब उसके अंदर जब बीज पड़ती है तो फिर बीज में से बीज पड़ता है तो फिर बीज में से पौधे निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। उसी तरीके से कल्ब की भी जमीन होती है। ये जमीन कैसे नरम होती है, ये अल्लाह की रहमत से नरम होती है। ठीक है, तो अगर अल्लाह की रहमत इस कल्ब में ना पहुंच पाए तो फिर ये जमीन बंजर हो जाएगी, ये जमीन सख्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब इनको अल्लाह की रहमत नहीं पहुंच रही, तो इनके कल्ब की जमीन यानी इनके रूहानी टर्फ जो है, ठीक है, रूहानी ग्राउंड जो है वो सख्त हो गया। ठीक है, तो अब जब ये सख्त हो गया ना, तो फिर हक बात का इन पर असर ही नहीं। अब जब सख्ती हो गई एक दफा, अब इनको नसीहत करते हैं, अच्छी बात कहते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इनके सामने नबी अलैहिस्सलाम की बातें करते हैं, इनके सामने जन्नत का तस्करा करते हैं, जहन्नम का तस्करा करते हैं, कोई असर नहीं होता। राइट, कोई असर नहीं होता। इसकी वजह क्या कि जमीन सख्त हो गई है। क्यों सख्त हो गई भाई, कि आपने अहद शिकनी करी थी, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को रोक दिया आप तक पहुंचने से। ठीक है, तो अब वही चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम, कि भाई पहले नाफरमानी होती है, कि पहले जो है वो सख्ती होती है, पहले बात समझ में आना बंद हो जाती है, या पहले जो है वो जमीन सख्त होती है। तो भाई पहले जो है ना वो सीधा सीधा अताअत होती है, जब अताअत आपने नहीं करी है तब आपकी जमीन जो है वो सख्त होनी शुरू होती है, और फिर जो एक्स्ट्रा रूहानी बारिश थी उस रूहानी बारिश का आपके ऊपर असर नहीं होता। तो बात कहाँ से शुरू होती है, अताअत से शुरू होती है, ठीक है, बात मानने से शुरू होती है। आप बात ही नहीं मानते तो फिर आगे आपका मामला जो है वो खराब हो जाता है। तो चिकन जो है ना, चिकन वो क्या है, बात मानना, अताअत करना। अच्छा, फिर उसके बाद एग आता है, एग पहले नहीं आता, पहले चिकन आता है यानी बात मानना, फिर उसके बाद एग आता है। अच्छा, तो फरमाते हैं कि हमने उनके कुलूब को सख्त कर दिया कि हक बात का उन पर असर ही नहीं होता। ठीक है, तो एग क्या हुआ, फिर एग जो है वो रूहानी फयूजात होए, रूहानी अनवारात होए, वो इल्म नाफे हुआ जो कि नसीहत करने वाले के जुबान से निकल करके इस तक पहुंचता है, वो इल्म नाफे, ये एग हुआ। ठीक है, जब आपने चिकन को ही खराब कर दिया तो अब जो है ना वो एग शेक का कोई फायदा नहीं, एग कोई नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस सख्त दिली के आसार से ये है कि वो लोग यानी उनमें के उलमा, उनमें के उलमाए का नाम कलाम इलाही यानी तौरात को, ठीक है, यानी सख्त दिली के आसार। फिर एक और असर क्या हुआ उनके ऊपर कि जो लोग कलाम इलाही यानी तौरात के उलमा थे, उनको इसके अल्फाज या मतालिब के मवाके से बदलते हैं। ठीक है, यानी उलमा ने तौरात के अल्फाज को बदलना शुरू कर दिया या उलमा ने तौरात के मानी को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी तहरीफ लफ्जी या तहरीफ मानवी करते हैं। ठीक है, तो उलमा कौन होते हैं भाई, जिनके सर के ऊपर टोपी टोपी पहनी हुई होती है, वो उलमा होते हैं। उलमा कौन होते हैं, जिनके सर के ऊपर जो है वो दस्तार रखी हुई होती है, वो उलमा होते हैं। जो पगड़ी बांधते हैं वो उलमा होते हैं, या जो जुब्बा पहनते हैं वो उलमा होते हैं, या जिनकी लंबी सी दाढ़ी होती है वो उलमा होते हैं। उलमा कौन होते हैं, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, पगड़ी वाले, जुब्बे वाले, कुर्ते वाले, पजामे वाले, या जो अपने ऊपर जो है वो मोटी मोटी किताबें लाद करके चल रहे होते हैं, वो उलमा होते हैं। नहीं, उलमा कौन होते हैं, उलमा वो लोग कहलाते हैं जो के मुस्तकिलन लग करके अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करते हैं। ठीक है, यानी जिनका कैरियर ही क्या होता है, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर। ठीक है ना, जिस तरह इंजीनियर जो होता है ना, वो कौन इंजीनियर होता है, इंजीनियर वो नहीं होता जो घर के अंदर जो है वो चार पांच चीजों को ठीक कर दे। ठीक है, या इंजीनियर वो नहीं होता जो कि खाली जो है वो इधर उधर से उसने कुछ थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग का फन हासिल कर लिया हो, बल्कि इंजीनियर तो वो होता है ना जो कि फुल टाइम लग करके जो है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करे, उसको इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, या बीटेक वगैरह के जो है वो बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी का जो है वो डिग्री हासिल करे, उसको इंजीनियर कहते हैं। उसी तरह डॉक्टर भी जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि इधर इंटरनेट से कुछ पढ़ लिया, उधर जो है यूट्यूब की वीडियो देख ली तो अब जो है वो डॉक्टर बन गया। नहीं, उसको डॉक्टर नहीं कहते, बेशक उसको कुछ इलाज मुआलजे की सूझबूझ हासिल हो गई हो, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं कहते। डॉक्टर तो वो होता है जो मुस्तकिलन बड़े डॉक्टर्स की सोहबत में बैठ करके, उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले करके मुस्तकिलन मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। उसी तरीके से आलिम भी उसी को कहते हैं जो कि मुस्तकिलन डेडिकेटेडली बड़े उलमा के साथ बैठ करके या जिंदगी गुजार करके उनसे जो है वो इल्म हासिल करता है, उसको उलमा कहते हैं, उनको उलमा कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो उलमा होते हैं ना, तो अब ये किस नेमत के हामिल होते हैं, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत के हामिल। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी नेमत, अल्लाह ताला के जो वही के उलूम हैं उनका इल्म रखने वाले, ये सबसे बड़ी नेमत है। डॉक्टरी का इल्म रखने वाला ये सबसे बड़ी नेमत का हामिल नहीं होता, इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का, या किसी और इल्म का हामिल जो है वो सबसे बड़ी नेमत का हामिल नहीं होता, बल्कि जो अल्लाह के वही के उलूम हैं, जो अल्लाह के रसूलों के वास्ते इस दुनिया में आए हैं, ये सबसे बड़ा इल्म है और इनका रखने वाला सबसे बड़ा नेमत का उठाने वाला होता है। ठीक है, अब ये जब अल्लाह ताला के साथ अहद शिकनी करता है ना, तो चूंकि सबसे बड़ी नेमत का हामिल होता है, इस वजह से इसको सजा भी सबसे बड़ी मिलती है, इसको सजा भी सबसे बड़ी मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जब अहद शिकनी करी ना, उलमा ने अहद शिकनी की, भाई इनके पास तो इल्म था ना, ये जाहिल तो नहीं थे, ये कम इल्म तो नहीं थे। ठीक है, कम इल्म अगर अहद शिकनी करता है तो सजा उसको भी मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती जितने का आलिम को मिलती है। ठीक है, तो इन लोगों ने जब अहद शिकनी करी तो अल्लाह ताला ने इनको भी रहमत से दूर कर दिया, जैसे किसी को भी रहमत से दूर कर देते हैं। ठीक है, हर एक को रहमत से दूर कर देते हैं जो अहद शिकनी करता है, लेकिन आलिम ने जब अहद शिकनी करी वो रहमत से दूर हो गया, तो जब उसका कल्ब सख्त हो गया तो उसने फिर कितना बड़ा गुनाह किया कि अल्लाह के कलाम ही को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, अल्लाह के कलाम ही को बदलना शुरू कर दिया, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि तहरीफ लफ्जी या तहरीफ मानी शुरू कर दी, मानवी शुरू कर दी, और इस तहरीफ का असर यह हुआ कि वो लोग जो कुछ उनको तौरात में नसीहत की गई थी उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा, नफे का बड़ा हिस्सा जो कि उनको अमल करने से नसीब हुआ था, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था उसके ऊपर अमल करते तो उनको सबसे बड़ा मुकाम भी मिलना था। ठीक है, जब आलिम अपने इल्म पे अमल करता है तो उसको जो मुकाम मिलता है वो किसी डॉक्टर को नहीं मिल सकता, किसी इंजीनियर को नहीं मिल सकता, किसी साइंटिस्ट को नहीं मिल सकता। जितना इज्जत, जितना मर्तबा, जितना अल्लाह ताला के यहाँ का कुर्ब, जितनी जन्नत के अंदर मुकाम उसको मिलता है उतना किसी दूसरे नेकी के काम करने वाले को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर ये इल्म पे अमल करते तो इनको तो बड़ा हिस्सा मिलता नफे का, सवाब का, लेकिन इन्होंने अपना वो बड़ा हिस्सा जो था वो फौत कर दिया, दे लॉस्ट इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा मश्क उनकी इस तहरीफ के मजामीन मुतअल्लिका बितस्दीक रिसालत मुहम्मदिया में होती थी। क्या मतलब है? ठीक है, कि अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म दिया था ना, वो इल्म सिर्फ ये नहीं था कि वुजू ऐसे करना है और नमाज ऐसे पढ़नी है और जकात ऐसे देनी है और मीरास की तकसीम ऐसे करनी है और जो है वो जो चोरी करने वाला है उसको सजा ऐसी देनी है, ये खाली इल्म नहीं दिया था, ये भी शरीयत का इल्म है, ये भी वही सही उनको इल्म दिया गया था, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने इन अहले किताब के उलमा को किस बात का इल्म दिया था कि अल्लाह के आखिरी नबी कौन है और उनकी क्या क्या निशानियां हैं। ठीक है ना, और जैसे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है कि बहुत ही प्रिसाइस इल्म दिया था अपने आखिरी नबी का, बल्कि अपने आखिरी नबी की उम्मत का भी, अपने आखिरी नबी के सहाबा का भी, कितना एग्जैक्ट इल्म इनको दिया था। तो इनको तो क्या करना था कि अब उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए जैसे ही आखिरी नबी दुनिया में आए वैसे ही इनको लपक करके उनके ऊपर ईमान ले आना था, उनकी तस्दीक कर लेनी थी ना, है उनकी रिसालत का इकरार कर लेना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बजाय इसके कि अपने आप को सुपुर्द करते उस आखिरी नबी के जिसकी सारी निशानियां इनके पास मौजूद थी, इन्होंने उनकी मुखालफत शुरू कर दी, और चूंकि इनकी किताबों के अंदर उनकी निशानियां मौजूद थीं और ये नहीं चाहते थे कि इनके जो मुरीदीन हैं वो भी आखिरी नबी के ऊपर ईमान ले आए, तो इन्होंने अपनी सारी तवानाइयां, अपनी सारी मेहनतें उस इल्म को छुपाने में सर्फ कर दी कि जिस इल्म को जान करके इनके जो फॉलोअर्स थे वो आखिरी नबी के ऊपर ईमान लेकर के आ जाते, उन्होंने उनको छुपाने के ऊपर अपनी तवानाइयां सर्फ करनी शुरू कर दी। ठीक है, अपनी मेहनतों को जाया करना शुरू कर दिया उन्होंने उसके ऊपर, वजह से कि खुद भी ईमान लेकर के आते और अपने फॉलोअर्स को भी जो है बताते कि हाँ भाई यही है आखिरी नबी, इनके ऊपर तुम भी ईमान लेकर के आओ। ठीक है, तो जाहिर है कि ईमान से ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या होगा, इनको तो डबल सवाब मिलना था ना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लेकर के आए, पिछले भी सारी नबियों पर ईमान लेकर के आए, और नबी अलैहिस्सलाम पर भी ईमान ले आते तो इनका सवाब दुगना हो जाता, जैसे कि कुरान मजीद में इनके दुगने सवाब का जिक्र है या हदीस मुबारका के अंदर जिक्र है, लेकिन उल्टा इन्होंने मुखालफत करी तो अब इन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान, यानी जिसको $1 मिलियन मिलने थे तो उसका नुकसान ज्यादा बड़ा होगा, या जिसको $2 मिलियन मिलने थे उसका नुकसान ज्यादा बड़ा नुकसान होगा अगर उसको ना मिले। तो इनको $1 मिलियन नहीं मिलने थे रूहानी, बल्कि इनको $2 मिलियन रूहानी डॉलर मिलने थे, तो इन्होंने ज्यादा बड़ा अपना नुकसान किया ना दूसरों के मुकाबले में। गर्ज नकदे मीसाक पर लानत मुरतब हुई, ठीक है, अहद के तोड़ने पर इनके ऊपर, यानी इनको रहमत से दूर कर दिया गया, और लानत पर कसावत, यानी दिल की जमीन सख्त हो गई, जब रहमत की बारिशें बंद हो गई तो दिल की जमीन सख्त हो गई यानी कसावत। और कसावत पर तहरीफ यानी कसावत जब हो गई, दिल की जमीन सख्त हो गई, ठीक है ना। अब अल्लाह की तरफ से जो नसीहत आनी है वो तो नहीं पहुंचनी इन तक, तो अब ये जमीन जो बंजर हो गई है, अब जमीन के अंदर क्या होता है, बंजर जमीन में क्या होता है, सेम और थोर, उसके अंदर जो है वो कड़वी चीजें पैदा होती हैं, उसके अंदर सेम पैदा होता है, या वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर, वो जो यानी सॉल्ट और इस किस्म की चीजें जो कि उल्टी जमीन को बर्बाद कर देती है ना। तो जब जमीन सख्त हो जाती है तो अब शैतान की फसल उस जमीन के अंदर उगती है, अब उस जमीन के अंदर शैतान की फसल उगती है यानी नुकसानदेह चीजें उगती हैं। तो क्या शैतान की फसल, के शैतान का तो काम ही यह है कि वही से इंसानों को दूर करें, वही के बारे में इंसानों को गलत फहमी में मुबतला करें। तो अब शैतान ने इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपना मकसद पूरा करने के लिए, ठीक है। किनको इस्तेमाल किया अपना मकसद पूरा करने के लिए, उलमा को इस्तेमाल किया अपना मकसद पूरा करने, ठीक है। अब देखें, शैतान ने नाचने गाने वालियों को खाली इस्तेमाल नहीं किया, नाचने गाने वालियों को भी तो शैतान इस्तेमाल करता है ना इंसानों को गुमराह करने के लिए, नहीं, बल्कि शैतान ने उलमाए दीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपना मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन उलमाए दीन इस नहज तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे कि वो शैतान का आलाकार बन गए, अल्लाह से वादा तोड़ने की वजह से, ठीक है। तो अल्लाह से वादा तोड़ना कितना अजीम गुनाह है कि जो अल्लाह की रहमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक बन सकते थे वो अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक बन गए। इसी वजह से तो इनके बारे में सूरह फातिहा में है, अल मग़ज़ूब अलैहिम गैर अल मग़ज़ूब अलैहिम, भी अल मग़ज़ूब कौन है, जो गजब को मुस्तहिक बन गए, कौन बन गए गजब को मुस्तहिक, उलमाए बनी इसराइल, ठीक है। क्योंकि बनी इसराइल में मेजोरिटी जो होती थी ना वो उलमा की, ये एक मदरसा क्राउड था, ये मदरसा क्राउड था, ठीक है ना। इन लोगों का काम ही था लिखना पढ़ना और बाकी चीजें तो इनकी सेकेंडरी होती थी, प्राइमरी काम इनका क्या था, इल्म सीखना और आगे सिखाना, ठीक है। बाकी जो इधर उधर के काम होते थे ना ये फिर अपने गुलामों से करवाते थे, ये काश्तकारी करना, बागबानी करना, और जो है वो उनके पर छोटे लोग वो वाला काम किया करते थे। तो अब यहाँ सारी बातें क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उलमा से नफरत करना शुरू हो जाए, इसलिए कर रहे हैं सारी बातें, बस फिर अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर, ठीक है ना। यानी जो भी नसीहत को सुनेगा किसी दूसरे के लिए तो उसके साथ तो फिर बुरा ही मामला होगा ना, और खुसूसन अगर वो नसीहत की बात को सुन रहा है उलमा से नफरत करने की खातिर, के उलमा के लिए और दिल में बोझ बढ़े उसका, क्योंकि उलमा ऐसे होते हैं, उलमा को ऐसी सजा मिलती है, तो फिर उसका भी बेड़ा गर्क ही होगा। तो ये हम सारी बातें क्यों कर रहे हैं, ये उलमा से नफरत के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी इबरत के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कि हम भी तो अल्लाह का इल्म हासिल कर रहे हैं ना, हम भी तो अल्लाह के दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं ना। अगर हमने इस इल्म के साथ फिर नाकदरी का मामला किया और इस इल्म के ऊपर अमल नहीं किया तो फिर हम भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर ना हो जाए, ठीक है, और हम भी उसी लाइन में शामिल ना हो जाए जिस लाइन में उलमाए बनी इसराइल शामिल हुए, ठीक है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। गर्ज नफ्स मिसाक पर लानत मुरतब हुई, लानत पर कसावत वगैरह, और कसावत पर तहरीफ, और तहरीफ पर फौत हिस्से अजीम, ठीक है, यानी बड़ा हिस्सा जिनको मिलना था वो फौत हो गया इनकी तहरीफ की वजह से। और वजह तरतीब जाहिर है, यानी ये जो ऑर्डर हुआ ना तो ये बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल अपेरेंट, बिल्कुल क्लियर है कि भाई यही तरतीब है, ऐसे ही मामला होता है, ठीक है। तो बात शुरू जो है वो नक्ज मीसाक से होती है, ठीक है। हम सब ने क्या मीसाक किया हुआ है अल्लाह ताला के साथ, जी आप बताएं, हम सब ने अल्लाह ताला के साथ क्या मीसाक किया हुआ है, क्या वादा किया हुआ है अल्लाह ताला के साथ, सब ने, क्या वादा किया भाई, कालू बला वाला वादा, रब होने का वादा, ठीक है। ये तो माशाल्लाह आपने हजरत जी के बयानात से सुन लिया है, लेकिन जिसने हजरत जी का बयान नहीं सुना तो क्या उसने वादा नहीं किया हुआ, हमने क्या वादा किया हुआ है? हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, ये वादा किया हुआ है। ये इन्होंने बिल्कुल सही लगा, कलमा। ये कलमा ही वादा है अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, अल्लाह के रब होने का। अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी रब नहीं है, ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह को राजी करने का और अल्लाह की दी हुई कामयाबी को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का, ठीक है। ये वादा हमने अल्लाह ताला के साथ किया हुआ है, तो अब हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा वादा की कोई जरूरत भी नहीं कि जी बैत करेंगे तब वादा होगा, बैत नहीं करेंगे तो फिर वादा नहीं होगा। नहीं, ये बैत तो करी हुई है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये सारी की सारी बैत सबने करी हुई है, ठीक है, वरना फिर ईमान वाले नहीं है। जो ईमान वाला ही नहीं है तो फिर उसका वादा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो हम किस साइड में अपने आप को रखते हैं? ईमान वालों में रखते हैं कि कुफार में रखते हैं? ईमान वालों में रखते हैं ना, तो अगर ईमान वालों में रखा है तो फिर वादा तो हमारे ऊपर है, और अगर ईमान वालों में नहीं रखा तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ तो बैठना ही नहीं चाहिए ना फिर। फिर तो किसी ऐसे दावत के उसमें जाए ना, आपके मुसलमान होने के फदाइल सुनने को मिले। अच्छा, तो फरमाते हैं कि और फिर ये भी तो नहीं कि जितना कर चुके उस पर बस करे, बल्कि हालत ये है कि आपको आए दिन यानी हमेशा दीन के बाब में किसी ना किसी नई खयानत की इत्तला होती रहती है, जो उनसे सादर होती रहती है, बजुज उनके मादूदे चंद शख्सों के जो कि मुसलमान हो गए थे। सो आप उनको माफ कीजिए और उनसे दरगुजर कीजिए, यानी जब तक शरी जरूरत ना हो उनकी खयानतों का इजहार और उनको फजीहत ना कीजिए, ठीक है। तो ये जो बनी इसराइल हैं, ये एक तो अपने अपने जो कलाम था अल्लाह ताला के इनके पास, उसको उसकी तहरीफ करते रहते थे, बल्कि उसके अलावा और भी नई नई खयानतें करते रहते थे, जिनका नबी अलैहिस्सलाम के पास रिपोर्ट्स पहुंचती रहती थी। तो सभी करते थे सिवाय चंद एक के उंगलियों पर, जिनको गिना जा सकता है, जो कि मुसलमान हो गए थे। तो आप ना इनको माफ कीजिए, इन्हें दरगुजर कीजिए। अच्छा, ये जो उन्होंने लिखा ना, इनकी खयानतों का इजहार, उनको फजीहत ना कीजिए, तो इसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तो आगे नुक्ता लिखा है कि बिला शुबा अल्लाह ताला खुश मुआमला लोगों से मोहब्बत करता है, ठीक है, यानी इसका इजहार करते रहना कि उन्होंने अब ये खयानत करी, अब उन्होंने ये खयानत करी, और उनको बुरा भला कहते रहना, तो ये खुश मुआमलगी नहीं है। तो अल्लाह ताला खुश मुआमला लोगों से मोहब्बत करता है, यानी इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ठीक है। तो मुहसिनीन कौन होते हैं? जो कि अच्छा मामला करते हैं लोगों के साथ, उनकी बुराइयों का हर वक्त जिक्र नहीं करते रहते हैं। लेकिन अच्छा, आगे थानवी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर ये लिखी कि बिला जरूरत फजीहत ना करना खुश मामलगी है, ठीक है, बिला जरूरत फजीहत ना करना खुश मामलगी है। क्या मतलब कि इसकी तफसीर क्या है? कि अगर जरूरत हो कि उनकी बुराइयों को बयान किया जाए तो उस वक्त बयान करना जरूरी है, उस वक्त बयान करना पड़ेगा, लेकिन बस अपनी यानी जिसको हम कहते हैं दिल की भड़ास निकालने के लिए, ठीक है, दिल की भड़ास निकालने के लिए किसी की बुराई को बयान करना, ये खुश मामलगी नहीं है। जरूरतन बयान करना, ये तो फिर जरूरत होती है कि भाई हाँ, किसी को बचाना है उसकी शर से, ठीक है, किसी को जो है वो उसकी गलत फहमियों से बाहर निकालना है, किसी गलत काम के बारे में गलत फहमियों से बाहर निकालना है, तो फिर उसको बताना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरतन बताना है ना, ठीक है। और दूसरी, इसके अंदर एक और भी नुक्ता जो आजकल के अहवाल को देख करके सामने आता है, वो क्या है कि अवामुन नास के सामने इवन काफिरों की कोई खास किस्म की बुराइयां जो है ना, वो अवामुन नास के सामने बयान करने से फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। अवामुन नास कौन होते हैं, ठीक है, अवामुन नास के सामने कुफार की गलतियां बयान करना या उनकी बुराइयां बयान करना, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे गलत काम किया, उन्होंने वैसे काम गलत काम किया, वो ऐसे खयानत करते हैं, वैसे खयानत करते हैं, तो इससे जो है ना वो फायदे की बजाय नुकसान भी हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि पहली बात तो ये कि अवामुन नास होते कौन है, ठीक है, जिनके सामने हर चीज बयान कर देने से नुकसान हो जाता है, तो ये बताएं जी अवाम उन्नास कौन होते हैं कि जिनके सामने हर चीज बयान कर देने से नुकसान हो जाता है, वो आलिम नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये एक जवाब है कि वो आलिम नहीं होते, वो आवाम होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, यहां पर अवाम उन्नास के लिए सिर्फ नॉन आलिम की तारीफ काफी नहीं है, ठीक है, बल्कि कुछ और डिटेल चाहिए इसके लिए। यहां पर किन अवाम की बात हो रही है या किन लोगों की बात हो रही है जो कि अवाम उन्नास होते हैं, जिनके सामने हर चीज बयान कर देने से नुकसान हो जाता है। अल अवाम कल अनाम, यानी अवाम उन्नास मवेशी होते हैं। ठीक है, मवेशी होते हैं, वो सही अरबी का एक मकबूला है, लेकिन यहां पे उसकी रेलेवेंस नहीं बन रही ना। तो देखें, सोशल मीडिया के ऊपर कौन लोग होते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया की मोहब्बत वाले हैं? नहीं, वो फिर वो दुनियादार कहलाते हैं, अवाम उन्नास अलग डेफिनेशन है। सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग होते हैं? ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, सारे तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते ना, इन्फ्लुएंस्ड भी तो होते हैं ना। खाली सारे इन्फ्लुएंसर्स ही थोड़ी होते, रवाबिजा करने वाले हैं, तो रवाबिजा करने वाले तो चंद लोग होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं ना, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि आजकल की आवाम जो सोशल मीडिया के ऊपर है, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, कि जिनका जो है वो आलिम से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई राबता नहीं होता। ठीक है, यहां पर आवाम से वो मुराद है, ठीक है, जिनका आलिम से कोई बराह रास्त राबता नहीं, ताल्लुक नहीं है, पूछने वाला ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बल्कि वो बस कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया है, लेकिन उनका कोई मजलिस में आना जाना नहीं है, उनका कोई इस्लाही ताल्लुक नहीं है, वो पूछते नहीं है, बस वो वन वे ट्रैफिक में सुन लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका कोई पूछने का ताल्लुक नहीं होता, उनके सामने जब आप कुफार की बातें या कुफार की जो है ना वो बातें खाली नहीं, बल्कि कुफार की जो है वो क्या कहते हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड खयानतें जब ये उनके सामने खोलते हैं ना, तो अब उनका आलिम दीन से कोई इस्लाही ताल्लुक तो है नहीं, कोई पूछने वाला ताल्लुक तो है नहीं, ठीक है, कोई शेख तो उनकी जिंदगी में है नहीं कि जिससे कि वो अपने जहन में आने वाले वसवसों को क्लियर करवा सके। जब वो कुफार की ट्रिक्स एंड टेक्निक सुनेंगे या उनके दलाइल सुनेंगे, जो कि गलत दलाइल ही होते हैं ऑफ कोर्स, उनके गलत दलाइल सुनेंगे, तो अब उनका ऐसा तो कोई वास्ता है नहीं शेख साहब के साथ या आलिम साहब के साथ या मुफ्ती साहब के साथ कि वो अपने जहन में आने वाले डाउट्स को क्लियर कर सके, ऐसा तो कोई ताल्लुक है नहीं उनका। तो जब उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होगा तो फिर उनके जहन में क्या होगा, फिर शैतान, ठीक है, शैतान जो है वो उनके जहन में वसवसे डालेगा, उनके जहन में डाउट्स डालेगा, ठीक है, और वो फिर एक्सप्लॉइट करेगा उन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को जो कि कुफार की उन्होंने सुनी है, अब वो उनको एक्सप्लॉइट करके उनको मजीद गुमराह करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका तो कोई सीखने का ताल्लुक ही कोई नहीं, पूछने का ताल्लुक ही कोई नहीं, ठीक है। तो अब ये जो अवाम उन्नास होते हैं ना, तो इनके सामने हर चीज नहीं बयान की जाती, नहीं बयान करनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि पिछले दिनों हमारी जो सीरत सहाबा वाली क्लास थी उसके अंदर ये मौजू भी आया था, ये एक वाकया भी आया था कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर ये इरादा किया कि हज के मौके के ऊपर जब अरफात का खुतबा होता है तो उसके अंदर जो है ना वो हम कुछ नए जो ताजीरी अहकाम वगैरह होते हैं, हुकूमत की नई पॉलिसीज होती हैं, हम उनका ऐलान कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मजमा जो है वो अरफात के मैदान में मुसलमानों का जमा होता है, दूर दूर से लोग हज करने के लिए आते हैं, और उमर फारूक रज़ी के जमाने में तो इस्लाम कितना फैल चुका था ना, ठीक है। तो जब उन्होंने इस इरादे का इजहार किया अपनी मुशावरती काउंसिल के सामने, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई था नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हो चुके थे, नबी अलैहिस्सलाम सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, ठीक है। तो अब जो सबसे बड़ा होता है ना, तो उसको अब क्या करना होता है, अब उसको छोटों से मशवरा करना होता है, ठीक है, छोटों से मशवरा करना होता है, ये उसके लिए खैर है। अल्लाह ताला से तो इस्तखारा किया जाता है, मशवरा किससे किया जाता है, इंसानों से किया जाता है। तो जो खुद सबसे बड़ा है वो किस बड़े से मशवरा करेगा, उसके ऊपर तो कोई बड़ा इंसान है ही नहीं, तो वो अपने छोटों से मशवरा करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला इस मशवरे के जरिए से उसकी मदद कर पाते हैं, ठीक है। तो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको कहा, उमर ताला आप ये काम ना करें, ये अवाम है, ये दूर दूर से आए हुए लोग हैं, ये आपसे मशवरे के ताल्लुक में नहीं है, ये आपसे जो है वो पूछने का इनका, ये अरफात के दिन हज करके वापस चले जाएंगे अपने इलाकों में, ठीक है। तो अब जो आप नए कवानीन वगैरह इनके सामने बयान करेंगे ना, तो अब जो है ना, ये चूंकि नए लोग हैं, दूर रहने वाले लोग हैं, इस्लाही ताल्लुक में लोग नहीं हैं, पूछने वाला ताल्लुक इनका नहीं है आपके साथ, तो अब जो है ना शैतान एक्सप्लॉइट करेगा और इससे जो है वो केओस पैदा होगा, तो आप ये काम ना करें। उमर अतारों ने बात मान ली और उन्होंने फिर जो नए कवानीन थे वो पहले मदीना मुनव्वरा वापस जा करके सहाबे कराम के सामने बयान किए। जब सहाबे कराम उनके ऊपर मुत्तफिक हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों तक वो अहकाम पहुंचे, थ्रू प्रॉपर चैनल बाकी लोगों तक वो अहकाम पहुंचे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट जो बयान कर दिया जाता ना, तो भाई डायरेक्ट बयान करने में अब कोई वास्ता तो नहीं है पूछने और सीखने का, अब शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है, ठीक है। तो ये उसूल फिर यहां पर भी चलता है कि इस किस्म की जो कुफार की बातें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल लोग बहुत उछल रहे हैं, एथियस्ट को हरा दिया, राइट, एथियस्ट के साथ जो है वो मुकालमा हुआ और दलायल के साथ जो है वो एथियस्ट को हरा दिया। आपको पता भी है जो सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने उस मुकालमे को सुना है, आपके साथ क्या उनका पूछने वाला ताल्लुक है, आप क्या उनके साथ उनका ताल्लुक है, आपके साथ सीखने वाला, राइट। जो लाखों इंसान, लाखों मुसलमानों ने ये एथियस के साथ मुकालमे को जो है वो सुना है, तो क्या शैतान मर गया क्या उनके लिए, शैतान किधर गया, अब क्या हो रहा है, और हमें लोग आके बता रहे हैं, पहले भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या करें यार, कॉमन सेंस की बात है, पहले भी आप लोगों से बात हुई थी किसी मजलिस के अंदर बैठ करके, ये सही नहीं है, ये काम जो है वो सोशल मीडिया पे करने का कोई थोड़ी है, ठीक है। तो बाद में तो लोग आकर के भी बता रहे हैं कि जो उस एथियस्ट के दलाइल थे ना, वो हमारे दिमाग के अंदर फंस गए हैं और शैतान जो है वो वसवसे डाल रहा है, मुस्तकिल हमारे साथ जो है वो खेल रहा है कि खुदा नहीं है, खुदा का, खुदा को किसने बनाया, और ये क्या हुआ, और वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो आपने शैतान के दरवाजा खोल दिया ना, क्यों, आपको अकली दलाइल की फिक्र पड़ी हुई है, शैतान की फिक्र नहीं पड़ी हुई कि शैतान क्या करेगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज नहीं है सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। तो इससे जो इनकी खयानतों का इजहार, उनको फजीहत ना कीजिए, नहीं, लोगों के सामने बैठ करके इजहार ना कीजिए, लोगों में तो हर किस्म के लोग होते हैं ना, ठीक है, दूर के। अब नबी अलैहिस्सलाम के को मुनाफिकीन का इल्म था कि नहीं था, पक्का इल्म था मुनाफिकीन का, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम लोगों को वो मुनाफिकीन को सजा क्यों नहीं देते थे, क्यों नहीं देते, क्या वजह थी मुनाफिकीन को सजा ना देने की, कि जो आम लोग हैं, कौन भाई, मुसलमान, उस जमाने के मुसलमान जो आम लोग हैं, वो ये कहेंगे कि ये तो अपने लोगों को सजा दे देते हैं जो कि इनके साथ दोस्ती का इजहार कर रहे हैं, जो इनके साथ इनके मजलिस में आकर के बैठते हैं, जो इनके सामने जो है वो अदब और तमीज के साथ जो है वो क्या कहते हैं, जानू तलम्मुस जो है वो करके बैठते हैं, और ये तो इन्हीं को सजा देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का लिहाज किया कि नहीं, ये मामला हम नहीं करेंगे वरना शैतान उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सीखने की बात ये है कि हर चीज में मुंह नहीं मारना चाहिए, अपना ईमान जो है वो सबसे अजीज चीज है, ईमान को नहीं दांव पे लगा दें, इधर उधर से जो है ना वो चीजें जो सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं ना, ईमान खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि शैतान जो है वो कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये जो है ना अवाम की, ये यहाँ पे इस अवाम का ये कॉन्टेक्स्ट था कि عوام کے سامنے آپ ان خیانتوں کا اظہار نہ کیجیے اور ان کو فضیحت نہ کیجیے، بس ان سے درگزر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور بلا ضرورت فضیحت نہ کرنا یہ خوش معاملگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خالی یہ ظاہری اخلاق نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں کی خیر خواہی بھی ہے کہ آپ ہر چیز ان کے سامنے بیان نہ کریں، نہ کیا کیجیے۔ اور جو لوگ نصرت دین کے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو نصارہ ہے، نصارہ کا مطلب کیا تھا کہ جی ہم تو دین کی نصرت کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں، تو ہم نے ان سے بھی اس کا عہد مثل عہد یہود کے لیا تھا، جیسے یہود کے ساتھ عہد لیا تھا اسی طرح ان کے ساتھ بھی لیا تھا۔ سو وہ بھی جو کچھ ان کو انجیل وغیرہ میں نصیحت کی گئی تھی، اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ نفع کا جو کہ اس کو عمل کرنے سے ان کو نصیب ہوتا، فوت کر بیٹھے، کیونکہ وہ امر جس کو فوت کر بیٹھے توحید ہے اور ایمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم ان کو بھی ہوا تھا، اور اس کا حفظ عظیم ہونا ظاہر ہے۔ جب توحید کو چھوڑ بیٹھے تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا، یہ تو دنیاوی عقوبت ہوئی۔ بغض و عداوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر آیا، کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی۔ تو ان کا بھی وہی معاملہ جیسے کہ یہود کے ساتھ ہوا، اور جیسے کہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی شاید ترجمے کے دوران، کہ جو نصارہ تھے نا، نصارہ ہیں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے، اگرچہ کہ یہود سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اور دوسری بات یہ کہ یہود سے کوانٹیٹی میں علم کا زیادہ ہونا یا نہ ہونا دیٹ کین بی ڈیبیٹیبل، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہو جتنا کہ یہود کے پاس علم ہے، یعنی جو ان کے علماء ہوتے ہیں ان کے پاس، بلکہ ہو سکتا کیا ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ یہود کے پاس علم ہے۔ لیکن فرق کیا ہے یہود میں اور نصارہ میں، کہ یہود کی جو اوورال پاپولیشن ہے اس کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، جبکہ نصارہ کی جو اوورال پاپولیشن ہے ان کا ایک بہت چھوٹا پورشن جو ہے وہ عالم ہے۔ تو نصارہ کی تعداد بہت زیادہ ہے نا، وہ تو بلینز میں ہے نا نصارہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علم والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ وہ ویٹیکن سٹی میں ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ جو گریک آرتھوڈاکس کے اپنے چرچ میں ہوتے ہیں یا وغیرہ، ٹھیک ہے، زیادہ تر جاہل لوگ ہیں ان کے، زیادہ تر فالوورز ہیں ان کے، لیکن یہود میں ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر یہود کے اندر علم والے لوگ ہیں، لیکن پرنسپلی سپیکنگ دونوں کے ساتھ عہد لیا گیا، دونوں نے اپنے عہد کو توڑا، دونوں کی کامیابی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے میں، اور دونوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ہوا، اور یہ راستے سے گمراہ ہو گئے، ان کے اوپر ان کے درمیان جو ہے وہ بغض و عداوت ڈال دی گئی، اور ان قریب آخرت میں بھی، کہ وہ بھی قریب ہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے، پھر ان کو سزا دیں گے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اوپر سے دیکھنے میں یہ لوگ متحد نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے جو قلوب ہیں وہ شتى ہیں، یعنی متفرق ہیں، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ معارف و مسائل جو ہیں وہ پھر ہم اگلی کلاس سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ اس کلاس کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔